पृष्ठ संख्या एक, अध्याय एक। इतिहास क्या है? व्हाट इज हिस्ट्री? भविष्य अंधकार में, वर्तमान भारत स्वरूप है। आत्मसंतोष के लिए अतीत का अध्ययन ही इतिहास है। सामाजिक जीवन के मूल स्रोत इतिहास के संबंध में परंपरागत विभिन्न अवधारणाएं रही हैं। इतिहास वास्तव में ऐतिहासिक स्रोतों, अभिलेखों, संस्मरणों में वर्णित घटनाओं का न तो विवरण है और न तो अतीत तथा वर्तमान के बीच अनवरत परिसंवाद। अधिकांश घटनाएं मनुष्य की कृतियां होती हैं, उनके पीछे मानवीय मस्तिष्क की भूमिका निर्णायक होती है। इतिहासकार द्वारा इन घटनाओं के अंतस्तल में प्रवेश कर क्रियाकलापों के परिवेश में मानवीय मस्तिष्क को समझना ही इतिहास है। इतिहासकार समसामयिक सामाजिक रुचि तथा आवश्यकता के अनुसार अतीत की घटनाओं का निरूपण करता है। उसके प्रयास का लक्ष्य अतीत तथा वर्तमान के बीच ऐसे सेतु का निर्माण करना है जिसके माध्यम से वह समसामयिक समाज को अतीत का अवलोकन कराकर अतीत के उद्धरणों द्वारा वर्तमान प्रशिक्षित करे तथा भविष्य का मार्गदर्शन कर सके। इतिहासकार इस सेतु पर चक्रीय प्रकाश स्तंभ होता है जिसका उद्देश्य अतीत का अवलोकन कराना, वर्तमान को प्रकाशित करना तथा उज्जवल भविष्य के लिए दिशा निर्देश करना है। इतिहासकार को इस निरंतर प्रक्रिया से ही इतिहास का उद्भव तथा विकास होता है। ऐतिहासिक चिंतन का उद्गम एवं विकास, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरिकल थिंकिंग। तत्वमीमांसा दर्शन के विख्यात दार्शनिक इतिहासकार आरजी कॉलिंगवुड का अभिमत है कि मनुष्य चिंतनशील प्राणी है। अपने संबंध में चिंतन करते समय उसके हृदय में अचानक अपने पूर्वजों के विषय में ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा स्वयमेव प्रस्फुटित हुई कि वर्तमान का आविर्भाव कैसे हुआ। मानव हृदय में जिज्ञासा की इस जागृति के मनुष्य को अतीत के कोणों में झांकने के लिए विवश कर दिया। अतीत संबंधी ज्ञान की उत्कंठा के परिणाम स्वरूप इतिहास का उद्भव तथा इतिहास चिंतन का श्री गणेश हुआ। यही से साक्ष्यों के आलोक में यथार्थ अतीत के प्रस्तुतिकरण की इच्छा इतिहास के रूप में प्रस्फुटित हो उठी। संतत चिंतन के परिणाम स्वरूप एक अवधारणा बनी कि वर्तमान का आविर्भाव अतीत के गर्भ से हुआ है। इस प्रकार वर्तमान के परिवेश में अतीत की गवेषणा मानव प्रवृत्ति की विकासात्मक प्रक्रिया का इतिहास बन गया। मनुष्य अतीत कालिक ज्ञान के अभाव में किसी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर सका है। चंद्रमा के धरातल पर मानव अवतरण अचानक नहीं अपितु अनेक प्रयासों का परिणाम रहा है। एक के बाद अनेक प्रयासों की त्रुटियों में सुधार करते हुए मनुष्य अपने लक्ष्य में सफल हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू का विश्वास है कि वर्तमान में संपूर्ण अतीत का मेरे साथ घनिष्ठ संबंध है। इस प्रकार पंडित नेहरू ने भी कॉलिंगवुड की अतीत संबंधी अवधारणा की पुष्टि की है। इतिहास चिंतन के उद्गम के विषय में विभिन्न सभ्यताओं की अपनी विशिष्ट परंपरागत अवधारणाएं रही हैं। इतिहास नामक अध्ययन शाखा की उत्पत्ति यूनान में मिलती है। इसका उद्गम भौतिक कार्य व्यापार के महान उद्वेग की एक अभिव्यक्ति के रूप में हुआ। परीक्षा सिद्ध गवेषणा के अर्थ में स्वयं इतिहास शब्द का प्रयोग उस समय हुआ हिस्टोरे जब वह विशेषज्ञ होता था जिससे वाद विवाद के निपटारे के लिए अभ्यर्थना की जाती थी। अतः इतिहासकार से अभिप्राय वाद विवाद के निर्णय कराने वाले व्यक्ति से होता था। सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति इतिहास का जनक हेरोडोटस था। इतिहास शब्द से इसका अभिप्राय खोज था, अनुसंधान था। यूनानी जाति की ज्ञान पिपासा हिस्ट्री की परिभाषा में प्रस्फुटित हो उठी। इस प्रकार यह सर्वमान्य है कि हिस्ट्री अथवा इतिहास का उद्गम स्थल प्राच्य संस्कृति का केंद्र यूनान रहा है। महान यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने इतिहास चिंतन की आधारशिला का निर्माण किया। थ्यूसिडीडीज ने उस प्रसाद को विकसित किया। दोनों की अवधारणाएं इतिहास के चक्रात्मक गति में रही है। इति ह धन आस इन तीन शब्दों का संश्लिष्ट स्वरूप इतिहास है। इसका अर्थ है कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ। इस आख्या के अनुसार अतीत के जिन वृत्तांतों को हम विश्वास के साथ प्रमाणित कर सकें, उसे इतिहास की श्रेणी में रखा जा सकता है। सामान्यतया जनसाधारण घटना संबंधी ज्ञान को ही इतिहास की मान्यता देता है। घटना की व्याख्या में कारण श्रृंखला तथा परिणाम श्रृंखला का ज्ञान आवश्यक हो जाता है। भारतीय इतिहास चिंतन का यही मूल आधार रहा है। पृष्ठ संख्या 3। प्रत्येक युग की परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप इतिहास चिंतन का स्वरूप परिवर्तनशील रहा है। यूरोप में पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार आंदोलन ईसाई इतिहास दर्शन एवं अवधारणा के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी। इन दोनों प्रतिक्रियाओं एवं धर्म सुधारकों ने चर्च की निरंकुशता तथा संकीर्णता की कटु आलोचना की। धर्म तथा राजनीति में समीक्षात्मक बुद्धि तथा रुचि का प्रतिपादन किया। इसके लिए विभिन्न युगों का अवबोध तथा विभिन्न समस्याओं के मूल्यांकन की अपेक्षा थी। प्राचीन साहित्य में रुचि के लिए जन सामान्य को यूनानी तथा रोमन इतिहास के अध्ययन तथा सोत्साह अनुकरण के लिए प्रेरित किया गया। ज्ञान तथा तथ्यों की सहायता से लोरेंजा वल्ला ने चर्च के प्राधिकार तथा परंपरा को अस्वीकार किया। अनम्य तथा अपरिवर्तनीय तथ्यों का निरूपण करने के लिए समीक्षात्मक रीति रिवाज को विकसित किया गया। परिणाम स्वरूप यूनान की समीक्षात्मक बुद्धि पुनः प्रतिष्ठित हो उठी। इतिहास का अध्ययन ऐसे दृष्टांतों की गवेषणा के लिए किया जिनसे मानव समाज शिक्षा ग्रहण कर सके। प्रलेखों का आलोचनात्मक अध्ययन इतिहास का प्रेरणा स्रोत बन गया। 16वीं सदी को पांडित्य का युग कहा गया है। सत्ता तथा परंपरा का परित्याग कर आधुनिक मनुष्य ने तथ्यों से जूझने में गर्व का अनुभव किया। भाग्यवश पांडुलिपियों का विशाल भंडार उपलब्ध था। अतः गवेषणापरक इतिहासकारों ने मूल्यांकन के सिद्धांतों के आधार पर उन्हें परिशुद्ध करके संपादित किया। इसी समय से वैज्ञानिक युग का प्रारंभ हुआ। साक्ष्य तथा अनुभव को ज्ञान का प्रामाणिक आधार माना गया। इतिहास की पुस्तकों में इटली के फड़कते हुए जीवन की ध्वनि मिलती है। इस नवीन शैली से संपूर्ण यूरोप प्रभावित हो उठा। 20वीं सदी में इतिहास चिंतन का स्वरूप वैज्ञानिक होने लगा। कॉलिंगवुड तथा क्रोचे के अनुसार इतिहास ज्ञान मानव संबंधी ज्ञान का स्रोत है। क्रोचे ने संपूर्ण इतिहास को वर्तमान इतिहास कहा है, क्योंकि प्रत्येक इतिहासकार वर्तमान दृष्टिकोण से अतीत को देखता है। कॉलिंगवुड का प्रसिद्ध वाक्यांश सभी इतिहास विचारों का इतिहास है। इस प्रकार इतिहासकारों ने इतिहास के अंतर्निहित गुण रहस्यों को प्रकाश में लाने का प्रयास किया। राष्ट्रीयता का भयावह परिणाम प्रथम विश्व युद्ध पृष्ठ संख्या 4 1914 से 1919 तथा द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 था। 20वीं सदी में इतिहास चिंतन का स्वरूप सार्वभौमिक होने लगा। विश्व भ्रातृत्ववाद के परिवेश में इतिहास लिखा जाने लगा। एच जी वेल्स, टायनबी तथा स्पेंगलर ने यह सिद्ध किया करने का प्रयास किया कि इतिहास चिंतन का स्वरूप संकुचित तथा क्षेत्रीय नहीं अपितु सार्वभौमिक होना चाहिए। विश्व की विभिन्न संस्कृतियों को श्रृंखलाबद्ध करके सार्वभौमिक इतिहास की रचना की तथा विश्व भ्रातृत्ववाद को जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। परिणाम स्वरूप किसी राष्ट्र की समस्या को विश्व की समस्या मानकर उसका समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाने लगा। इस प्रकार प्रारंभ में इतिहास चिंतन अतृप्त ज्ञान तृष्णा को तृप्त करने का एक समाधान था, जो 20वीं शताब्दी में समस्त मानवीय कार्यकलापों तथा सार्वभौमिक परिवेश में विश्व भ्रातृत्ववाद के रूप में विकसित हुआ। इतिहास चिंतन का यही चरमोत्कर्ष है। इतिहास की परिभाषा। परिभाषा एक शाब्दिक प्रक्रिया है जिसका अभिप्राय किसी विषय के मूल तत्व को स्पष्ट करना है। शीलर के अनुसार परिभाषा दो कील की भांति है, जिसके माध्यम से इतिहासकार किसी मानचित्र पर चुभो कर सर्वमान्य मार्ग को निश्चित करता है। परिभाषा का मुख्य उद्देश्य किसी विषय को सरल तथा बोधगम्य बनाना है। उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान के मूल स्रोत इतिहास की परिभाषा को प्रस्तुत करना है। इतिहास क्या है? यह अत्यंत सरल प्रश्न है, परंतु इसका उत्तर इतना जटिल और गूढ़ है कि अभी तक इतिहास की कोई भी सर्वमान्य परिभाषा निश्चित नहीं की जा सकी है। प्रख्यात विद्वानों में मतैक्य का अभाव देखकर चार्ल्स फर्ट ने लिखा है कि इतिहास को परिभाषित करना सरल नहीं है। फिर भी इतिहासकारों ने अपने अपने ढंग से इतिहास की परिभाषा बताई है। एक इतिहास कहानी है। कुछ विद्वानों ने इतिहास को मात्र कहानी स्वीकार किया है। जीएम ट्रेवेलियन के अनुसार इतिहास अपने अपरिवर्तनीय अंश में एक कहानी है। फ्रेंच अकादमी ने इस विषय पर विचार प्रस्तुत किया है कि इतिहास स्मरण योग्य वस्तुओं की कहानी है। डच इतिहासकार हुइजिंगा ने इतिहास को अतीत पृष्ठ संख्या 5 की घटनाओं का उल्लेख स्वीकार किया है। एफ एस ओलिवियर के शब्दों में इतिहासकार को केवल कहानी बतानी चाहिए। इस कहानी के स्वरूप को उपदेश तथा नैतिक विचारों से दुष्कृत नहीं करना चाहिए। यदि इतिहास को मात्र कहानी ही स्वीकार किया जाए तो इसका स्वरूप और उद्देश्य क्या होना चाहिए? हेनरी पेरन के अनुसार इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है, परंतु यह परिभाषा भी त्रुटिपूर्ण है क्योंकि समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों के कार्यों एवं उपलब्धियों का उल्लेख इतिहास में नहीं होता है। क्या अशोक अथवा अकबर कालीन इतिहासकारों ने अपने इतिहास में समसामयिक समाज के सभी व्यक्तियों के कार्यों एवं उपलब्धियों का उल्लेख किया है? संभवतः नहीं। इतिहासकार केवल समाज का नेतृत्व करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों के कार्यों का वर्णन होता है। इस प्रकार इतिहास को समाज के सभी व्यक्तियों के कार्यों तथा उपलब्धियों की कहानी नहीं स्वीकार किया जा सकता। रेनियर के अनुसार इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों का उल्लेख होता है। सभ्य समाज से अभिप्राय संगठित समाज तथा राज्य और प्रशासन से है। जंगलों में जीवन व्यतीत करने वाले असंगठित मनुष्यों का इतिहास नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने ढंग से कार्य करता है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति का अपना इतिहास होता है, इतिहास जिसका जन सामान्य अध्ययन करता है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों का उल्लेख संभव नहीं है। इतिहास में सभ्य समाज से तात्पर्य संगठित समाज होता है। समाज का नेतृत्व कुछ व्यक्ति करते हैं, इसलिए उनके कार्यों का उल्लेख इतिहास में होता है। संगठित समाज द्वारा राज्य का निर्माण होता है, राज्य का शासन शासक द्वारा होता है। इसलिए यार्क पावेल ने इतिहास को राज्य से संबंधित कार्य व्यापार का उल्लेख माना है। उन्होंने सामाजिक राज्य में रहने वाले मानवीय कार्यों एवं उपलब्धियों को इतिहास स्वीकार किया है। सीले की भी रुचि राज्य के इतिहास में रही है। अब इतिहास समाज तथा राज्य का नेतृत्व करने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। 2. इतिहास सामाजिक विज्ञान है। इतिहास को समाज का सर्वांगीण चित्रण कहा जाता है। इतिहास मानवीय कार्यों का वर्णन मात्र ही नहीं अपितु उन नियमों की गवेषणा है जिनके परिणाम स्वरूप प्रगति विकास तथा पतन होता है। यही नहीं, जो राजनीतिक सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनों के कारण मात्र होते हैं। अतः इतिहास पृष्ठ संख्या 6 में उन शक्तिशाली प्रवृत्तियों का उल्लेख होना चाहिए जिन्होंने विभिन्न युगों की परिस्थितियों को प्रभावित किया है। सर चार्ल्स फर्स्ट ने लिखा है कि इतिहास मानवीय सामाजिक जीवन का वर्णन है। इसका उद्देश्य सामाजिक परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले उन सक्रिय विचारों का अन्वेषण है जो समाज के विकास में बाधक तथा सहायक सिद्ध हुए हैं। इन सभी तथ्यों का उल्लेख इतिहास में होना चाहिए। ए एल राउस ने भी इस तथ्य को मान्यता प्रदान करते हुए कहा है कि इतिहास भौगोलिक तथा वातावरण के परिवेश में समाज में रहने वाले मनुष्यों का उल्लेख है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक उद्भव एवं विकास मनुष्य तथा पर्यावरण की अंतर क्रिया की प्रक्रिया होते हैं। मनुष्य भौगोलिक परिस्थितियों में कार्य करता है तथा विचार करता है। भौगोलिक परिस्थितियां मनुष्य की कार्यक्षमता को प्रभावित करती हैं। समाज तथा संस्कृति का विकास पर्यावरण के परिवेश में होता है। अरब यूरोपीय भारतीय चीनी जापानी तथा अफ्रीकी समाज तथा संस्कृति को भौगोलिक परिस्थितियों ने सर्वाधिक प्रभावित किया है। अतः इतिहास अध्ययन के समय भौगोलिक परिस्थितियों तथा वातावरण को भी ध्यान में रखना चाहिए। मंगोलों को लड़ाकू जाति बनाने में भौगोलिक परिस्थितियों का निर्णायक दायित्व रहा है। इतिहास सामाजिक विज्ञान का उद्गम स्थल है। इसका अभिप्राय यह है कि इतिहास में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास का उल्लेख अपरिहार्य है। इसलिए हेनरी पेरेन ने कहा है कि इतिहास अतीत में स्थित मानवीय समाज के विकास का व्याख्यात्मक विवरण है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश शब्दकोश के अनुसार इतिहास में किसी देश, समाज तथा मनुष्य से संबंधित सभी घटनाओं का उल्लेख होता है। 3. इतिहास ज्ञान है। इतिहास एक प्रकार का ज्ञान है। इतिहास दर्शन है जो उदाहरणों द्वारा ज्ञान प्रदान करता है। चार्ल्स फर्थ के अनुसार इतिहास ज्ञान की एक शाखा ही नहीं अपितु एक विशेष प्रकार का ज्ञान है जो मनुष्य के दैनिक जीवन में उपयोगी है। मनुष्य इतिहास का अध्ययन अतीत के उदाहरणों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए करता है। प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध का भयावह परिणाम आधुनिक राजनयिकों के समक्ष ऐसे उदाहरण है कि कोई भी राष्ट्र परमाणु अस्त्रों द्वारा विनाशकारी विश्व युद्ध की कल्पना भी नहीं कर सकता है। अपने विचार के समर्थन में सर चार्ल्स फर्थ ने सर वाल्टर रेले के विचार को उद्धृत किया है। इतिहास का उद्देश्य अतीत के उदाहरणों द्वारा ऐसी शिक्षा प्रदान करना है जो मनुष्य की इच्छाओं और कार्यों का मार्गदर्शन कर सके। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर महान के असफलता को देखकर विश्व विजय की योजना का परित्याग किया। आज कोई भी राजनयिक अथवा राष्ट्राध्यक्ष नेपोलियन, हिटलर तथा मुसोलिनी का अनुकरण नहीं करना चाहता। इस प्रकार इतिहास एक प्रकार का ज्ञान है। कॉलिंगवुड तथा क्रोचे ने भी इस तथ्य को मान्यता प्रदान करते हुए कहा है कि ऐतिहासिक ज्ञान मानव संबंधी ज्ञान का स्रोत है। ऐतिहासिक ज्ञान मानव विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ रूप है। ऐतिहासिक ज्ञान मानव ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ रूप है। वीको तथा डिल्थिर का अनुकरण करते हुए क्रोचे कहता है कि मनुष्य प्रकृति के परिमंडल की उपेक्षा स्वयं अपने परिमंडल को अधिक गहराई से समझ सकता है। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक ज्ञान के सापेक्षतावाद तथा इससे वैज्ञानिक ज्ञान के यथार्थवादी स्वरूप के पार्थक्य पर बल देकर वह ऐतिहासिक ज्ञान की विशेषताओं पर प्रकाश डालता है। कॉलिंगवुड की भी यही अवधारणा है। इतिहास एक अद्वितीय प्रकार का ज्ञान है तथा वह मानव के संपूर्ण ज्ञान का स्रोत है। इस प्रकार इतिहास को ज्ञान की मान्यता प्रदान की गई है। 4. संपूर्ण इतिहास विचार का इतिहास है। कॉलिंगवुड संभवतः अपने सर्वाधिक प्रसिद्ध वाक्यांश में कहता है, संपूर्ण इतिहास विचारधारा का इतिहास होता है। मनुष्य का अर्थ विचारपूर्ण होता है। इतिहास में विचार को प्रधानता देने का तात्पर्य यह है कि विचार ही मानवीय कार्य व्यापार का मूल स्रोत तथा उद्गम स्थल है। मानवीय कार्यों के लिए विचार प्रेरक शक्ति है। इतिहास के अभिनेताओं के कार्यों एवं उपलब्धियों का अध्ययन करने के पहले उसके विचार का अध्ययन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार विचार का अध्ययन कार्यों के अध्ययन को सुगम तथा बोधगम्य बनाता है। डिल्थे ने इस मत का समर्थन किया है कि इतिहास वर्तमान में अतीत कालिक ज्ञान का अध्ययन है। इतिहासकार ऐतिहासिक अभिनेता के विचारों की पुनरावृत्ति कर अतीत का पुनर्निर्माण करता है। वही विचार इतिहास होता है जिसका अनुभव इतिहासकार कर सके अथवा जो इतिहासकार के मस्तिष्क में पुनर्जीवित हो सके। इसलिए रेनियर ने भी कहा है कि इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्यों के अनुभव की कहानी है। अतः अनुभव गम्य विचार को ही इतिहास की संज्ञा दी जा सकती है। क्या इतिहास विचार की ही इतिहास होता है? यह अवधारणा विद्वानों के बीच विवाद का विषय बनी हुई है। कॉलिंगवुड ने इस वाक्यांश को सर्वाधिक आलोचना प्रोफेसर वॉल्स ने की है। उनके अनुसार इतिहास विचारधारा नहीं होता, प्रायः दैवीय प्रकोप, बाढ़, भूकंप, अनावृष्टि तथा अतिवृष्टि मानवीय विचारों के विपरीत परिणाम देते हैं। इस प्रकार दैवीय प्रकोप के समक्ष मानवीय विचार प्रधान न होकर अस्तित्वहीन प्रतीत होने लगता है। हीगल तथा कार्ल मार्क्स ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अंतर्निहित शक्तियां प्रातः मानवीय इच्छा के विपरीत परिणाम देती हैं। यदि इतिहास में विचार की प्रधान विचार ही प्रधान होता तो संभवतः असफलताओं का इतिहास ही नहीं होता। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि विचार मानवीय क्रियाओं की उत्प्रेरक शक्ति होता है, फिर भी अदृश्य दैवी शक्तियों एवं प्राकृतिक प्रकोपों के समक्ष विचार नगण्य तथा अस्तित्वहीन हो जाता है। अतः सभी इतिहास को विचार का इतिहास नहीं कहा जा सकता है। यदि इतिहास विचार का इतिहास है और यदि प्रत्येक विचार स्वरूपतः ऐतिहासिक होता है तो मोहम्मद तुगलक भी विचार प्रधान योजनाएं विफल नहीं होती, नेपोलियन की रूस विजय योजना सफल नहीं होती, नेपोलियन की रूस विजय योजना असफल नहीं होती। ऐतिहासिक अध्ययन वस्तुतः आत्मगवेषणा की प्रक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकत आत्मबोध की सहायता से मनुष्य अपने वर्तमान कालिक जीवन को सुचारू रूप से नियंत्रित कर सकता है। 5. इतिहास अतीत कालिक अनुभव का वृत्तांत है, स्टोरी ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। अतीत का प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं है। कांते ने जब प्रत्यक्षवाद पॉजिटिविज्म का प्रतिपादन किया था तो इसका अभिप्राय था कि इतिहास एवं समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी सिद्धांत का प्रयोग आवश्यक होना चाहिए। यह एक वैज्ञानिक विधा है जिसका अभिप्राय यथार्थ तथ्यों की गवेषणा तथा उसके आधार पर इतिहास लेखन होना चाहिए। प्रोफेसर जेबी ब्यूरो ने कहा है कि इतिहास विज्ञान है, न कम और न अधिक। अधिकांश वैज्ञानिक विधा में आस्थावान इतिहासकारों ने विज्ञान की नवीन उपलब्धियों से प्रभावित होकर यह कहना प्रारंभ कर दिया कि विज्ञान की उपलब्धियों ने मानव समाज की धार्मिकता अंतरिक्ष संबंधी रूढ़िवादी अवधारणाओं को पृष्ठ संख्या 9 समाप्त कर नवीन चेतना को जागृत किया है। यदि वैज्ञानिक विधाओं का समुचित प्रयोग इतिहास अध्ययन में किया जाए, अतीत संबंधी अनेक तथ्यों का रहस्योद्घाटन होगा जो इतिहास की उपयोगिता में अवश्य वृद्धि करेगा। प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण से यदि अतीत का अध्ययन किया जाए तो क्या अतीत का प्रत्यक्षीकरण संभव है? यह एक विचारणीय प्रश्न है। यह नितांत सत्य है कि अतीत के प्रत्यक्षीकरण के लिए इतिहासकार के पास ऐसा कोई दुर्वीक्षक तथा सूक्ष्मीक्षक यंत्र नहीं है जिसके माध्यम से इतिहासकार स्वयं अतीत का यथार्थ अवलोकन कर सके तथा अपने समसामयिक समाज को यथार्थ अतीत का दिग्दर्शन करा सके। यदि इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है, ऐसी परिस्थिति में अतीत के महापुरुषों की उपलब्धि संबंधी ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए? ऐतिहासिक स्रोतों पांडुलिपियों में वर्णित उनकी उपलब्धियों को अनुभव द्वारा इतिहासकार अपने मस्तिष्क में एक परिकल्पनात्मक चित्र बनाकर समसामयिक समाज के समक्ष प्रस्तुत करता है। रेनियर का अभिमत है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने अनुभव के संस्मरण का सर्वोच्च महत्व है। अरस्तु ने यथार्थ अनुभव के प्रशिक्षण की भूरी भूरी प्रशंसा की है। प्रत्येक युग का मानव समाज अपने बच्चों को अतीत का संस्मरण सुनाते हैं और परंपरा के रूप में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी तक निर्बाध रूप से गतिशील रहती है। इतिहासकार के लिए अतीतकालिक घटनाओं, महान शासकों तथा महापुरुषों के कार्यों एवं उपलब्धियों का प्रत्यक्ष निरीक्षण संभव नहीं है। वह अपने अनुभव द्वारा ऐतिहासिक घटनाओं, महान शासकों तथा महापुरुषों की उपलब्धियों का अनुभव करके एक परिकल्पनात्मक मानसिक चित्र प्रस्तुत करता है। मुगल सम्राट अकबर की धार्मिक नीति का यथार्थ मूल्यांकन तभी संभव है जब इतिहासकार अपने को अकबर की स्थिति में रखकर तत्कालीन सामाजिक धार्मिक परिस्थिति का अध्ययन करे। सूफी आंदोलन तथा भक्ति आंदोलन ने तत्कालीन समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण, सौहार्दपूर्ण हिंदू मुस्लिम संबंध तथा सामाजिक वातावरण का मार्ग प्रशस्त करके दोनों समाजों के बीच एक ऐसे सेतु का निर्माण किया जिसके माध्यम से दोनों समुदायों ने एक दूसरे का सामाजिक रीति रिवाज, सभ्यता एवं संस्कृति को समझने का अभूतपूर्व प्रयास किया। सम्राट अकबर ने ऐसी परिस्थिति में अपने को पाया जिससे उदारवादी धार्मिक नीति अपनाने के लिए विवश हुआ। जब तक इतिहासकार उसकी परिस्थिति का अनुभव नहीं करेगा, अकबर की धार्मिक नीति का यथोचित मूल्यांकन संभव नहीं है। पृष्ठ संख्या 10। अतीत काल से प्रचलित अनुभव की कहानी एक पीढ़ी के पश्चात दूसरी पीढ़ी तक चलती है और इतिहास की वस्तु सामग्री बन जाती है। डॉक्टर LP पांडे ने इसे परंपरा के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए परंपरा को ऐतिहासिक वस्तु सामग्री स्वीकार किया है। उसके अनुसार सतत निरंतर साधित तथा श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतर तत्व के रूप में परंपरा भावी पीढ़ी की विकास धाराओं को सार्थक पृष्ठभूमि देता है। परंपराओं का विवरण इतिहासकार को स्पष्टीकरण के लिए कारणों, उद्देश्यों, प्रभाव तथा परिणाम की गवेषणा के लिए प्रेरित, प्रोत्साहित तथा विवश करता है। सम्राट अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति के कारणों की व्याख्या करते समय इतिहासकार तत्कालीन परिस्थिति, अकबर का उद्देश्य, धार्मिक नीति क्रियान्वयन के कारणों तथा परिणामों की व्याख्या करता है। इन सभी तथ्यों की अनुभूति इतिहासकार के लिए आवश्यक है। पाश्चात्य दार्शनिक पाविक ने स्पष्ट लिखा है कि यदि मानव व्यवहार में समानता नहीं होती तो इतिहास का स्वरूप अत्यंत कठिन एवं दुरूह हो जाता। पर कॉलिंगवुड ने पाविक के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहा है कि मानव व्यवहार परिस्थितियों के परिवेश में निरंतर परिवर्तनशील रहा है। 1919 में वर्साई की संधि के पश्चात परिस्थितियों ने हिटलर को सत्ता प्राप्त कर प्रतिशोध की प्रबल भावना को जागृत किया। हिटलर की आक्रमण नीति पर विचार करते समय इतिहासकार को तत्कालीन परिस्थिति के परिवेश में हिटलर की परराष्ट्र नीति का मूल्यांकन करना चाहिए। 6. संपूर्ण इतिहास समसामयिक इतिहास होता है। महान इटालियन दार्शनिक क्रोचे की अभिव्यक्ति है कि संपूर्ण इतिहास समसामयिक इतिहास होता है। जिस समय क्रोचे ने अपने इस प्रसिद्ध वाक्यांश के उद्घोषणा की उस समय 20वीं सदी के विद्वत समाज के लिए यह उपहासास्पद प्रतीत होता था कि कैसे अतीत को वर्तमान की संज्ञा दी जा सकती है। क्रोचे के वाक्यांश का तात्पर्य है कि प्रत्येक वर्तमान इतिहासकार अतीत का अपनी दृष्टि से अवलोकन करता है, अतीत को उस रूप में नहीं देखता जिस रूप में वह था। अतीत का निर्माण इतिहासकार के मस्तिष्क में होता है। उसके अनुसार इतिहासवाद इस तथ्य की स्वीकृति है कि जीवन यथार्थ इतिहास से अभिन्न है। यथार्थ को ऊपरी इतिहास तथा इतिहास अर्थात विचारों एवं मूल्यों के जगत तथा उसका प्रकाशन करने वाले निम्नतम जगत में विभक्त नहीं किया जा सकता। क्रोचे का आशय है कि घटनाएं तथा विचार सभी इतिहास प्रवाह के अभिन्न अंग हैं। उसकी विषय वस्तु है कि वर्तमान कालिक जीवन से संबद्ध होने के कारण इतिहास सदैव समसामयिक होता है एवं समसामयिकता की यह विशिष्टता है कि वह उसे इतिवृत्त से पृथक करती है। समसामयिक इतिहास को अनतीत दूर अतीत के रूप में देखे जाने वाले कालांतराल का इतिहास कहा जा सकता है। यह कालांतराल पिछले 50 वर्ष, एक दशक, एक वर्ष, एक मास अथवा एक क्षण का हो सकता है, किंतु उपयुक्त केवल उसी इतिहास को समसामयिक शब्द से विशेषित किया जा सकता है जो विवेचनीय कार्य के तुरंत बाद अस्तित्व में आए तथा जिसमें इस कार्य की चेतना विद्यमान हो। इसके विपरीत अतीत कालिक इतिहास वह है जो पहले से ही स्थित इतिहास के संदर्भ में उपस्थित होता है और इस प्रकार उस इतिहास की समीक्षा के रूप में अस्तित्व में आता है, चाहे वह इतिहास 1000 वर्ष अथवा 1 घंटा पुराना हो। अतीतकालिक अथवा असामयिक इतिहास की यह पहली अपेक्षा है कि वह इतिहासकार के चित्त को उद्वेलित करता है। परिणाम स्वरूप समसामयिक इतिहास की भांति वह इतिहास भी सजीव हो उठता है। यह एक स्पष्ट तथ्य है कि केवल वर्तमान कालिक जीवन में अभिरुचि की अतीत के अनुसंधान के लिए प्रेरित करती है और इस प्रकार अतीत कालिक तथ्य वर्तमान कालिक जीवन के हितों के साथ संयुक्त हो जाता है। इस प्रकार अतीत वर्तमान कालिक कौतूहलों अथवा स्वार्थों का समाधान प्रस्तुत करता है। एल्टन का अभिमत है कि वर्तमान के संदर्भ में अतीत का अध्ययन सुखद भविष्य के लिए होना चाहिए। प्रत्येक इतिहास समसामयिक होता है। अतीतकालिक घटना पेलिपोनेसियन युद्ध, मेक्सिको की कला, अरबी दर्शक का इतिहास वर्तमान में क्या अभिरुचि दे सकता है, परंतु इनमें से प्रत्येक उस क्षण इतिहास का स्वरूप धारण कर लेता है जब वर्तमान में यह हम अपनी आत्मिक आवश्यकताओं के अनुरूप उसका पुनर्विस्तरण कर लेते हैं। जब अतीत के विषय में जिज्ञासापूर्ण अनुसंधान करते हैं तो यह हमारे व्यक्तित्व के साथ उतने घनिष्ठ रूप में जुटा रहता है जितना कि हमारे वर्तमानकालिक अस्तित्व के प्रपंच इतिहास जीवन का इतिवृत्त दृश्य संख्या 12 होता है। इतिवृत्त न हो तो इतिहास असामयिक इतिहास होता है और इसे इतिवृत्तात्मक अतीतकालिक इतिहास भी कहा जा सकता है। क्रोचे के अनुसार वर्तमानकालिक जीवन में अभिरुचि ही किसी को अतीत का अन्वेषण करने के लिए प्रेरित कर सकती है, किंतु इन अभिरुचियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती है। क्रोचे हिगल के उस विचार से सहमत है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया में चेतना ही गतिमान तत्व है। इस प्रकार सामयिक इतिहास का आवश्यक लक्षण है, साथ ही इतिहास तथा जीवन का संबंध एकात्मकता से है। प्रमाण विहीन इतिहास निरर्थक होता है। परीक्षा सिद्ध प्रमाण का संबंध सदैव वर्तमान से होता है। इसलिए क्रोचे का प्रसिद्ध वाक्यांश संपूर्ण इतिहास समसामयिक होता है यथार्थ प्रतीत होता है। इतिहास की सामयिकता को अन्य विद्वानों ने भी स्वीकार किया है। डेनियर के अनुसार संपूर्ण अतीत मेरा अतीत है और मैं अपने व्यक्तिगत संतोष के लिए स्मरण करता हूँ। इतिहास अतीत का अध्ययन समसामयिक सामाजिक उपयोगिता के लिए करता है। देवी ने भी इसे स्वीकार करते हुए कहा है कि अतीत के प्रति निष्ठा न तो उसके लिए और न तो अतीत के लिए, बल्कि सुरक्षित तथा समुन्नत सुसंपन्न सुरक्षित तथा सुसंपन्न वर्तमान के लिए करते हैं कि वह सुखद भविष्य का निर्माण करेगा। अतः यह स्पष्ट है कि अतीत का अध्ययन अतीत के लिए नहीं अपितु सुरक्षित वर्तमान तथा सुखद भविष्य के लिए करते हैं। अतीत उस क्षण वर्तमान हो जाता है जब हम वर्तमान को आवश्यकताओं के अनुरूप उसका पुनर्विस्तरण करते हैं। फोक्सार्ट ने भी कहा है कि व्यवहारिक अतीत की आधारशिला पर ही वर्तमान का निर्माण हुआ है जो भविष्य को प्रभावित करेगा। यह यथार्थ है कि वर्तमान का निर्माण अतीत की ही आधारशिला पर हुआ है। प्रोफेसर वाल्स के अनुसार इतिहास अतीत के अंतराल में मानव जाति का अध्ययन होता है। वर्तमान की रुचि ही इतिहासकार को कल के अंतराल में निहित तथ्यों को प्रकाश में लाने के लिए प्रेरित करती है। मेंडेलबॉम ने भी अतीत में वर्तमान रुचि को प्रधानता दी है। अतीत का अध्ययन अतीत के लिए नहीं अपितु वर्तमान समाज की उपादेयता के लिए किया जाता है। प्रोफेसर गॉलब्रेथ का मत है कि अतीतकालिक घटनाओं के प्रस्तुतीकरण में इतिहासकार वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वर्तमान में सामयिक रुचि तथा उपादेयता को प्रधानता देने का अभिप्राय इतिहास को समसामयिक मान्यता प्रदान करना है। साथ इतिहास अतीत तथा वर्तमान के बीच सेतु है। हिस्ट्री इज अ ब्रिज बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। इतिहास क्या है अभी भी एक विचारणीय प्रश्न है। जी आर एल्टन के अनुसार इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है। इतिहासकार के इतिहास की सामग्री अतीतकालिक ऐतिहासिक तथ्य होते हैं तथा इतिहासकार वर्तमान का प्रतिनिधित्व करता है। तभी ऐतिहासिक तथ्य अपने युग के प्रतिमानों द्वारा प्रभावित इतिहासकार का व्याख्यात्मक विवरण होता है। चयन तथा व्याख्या की अंतर प्रक्रिया का स्वरूप अतीत तथा वर्तमान है। यदि तथ्य अतीत का प्रतिनिधित्व करता है तो इतिहासकार वर्तमान का। ईएचकार ने उचित ही कहा है, वस्तुतः इतिहास इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच अंतर्क्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया तथा वर्तमान और अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है। इस प्रकार इतिहास को अतीत तथा वर्तमान के बीच अनवरत परिसंवाद कहा गया है। यह एकाकी व्यक्तियों के बीच संवाद नहीं अपितु अतीतकालिक तथा वर्तमानकालिक समाज के बीच संवाद है। इस प्रकार अतीत तथा वर्तमान इतिहास में एक दूसरे से संपृक्त है। पाश्चात्य दार्शनिक हिगेल ने प्रसा के उत्थान में चरमोत्कर्ष के साथ इतिहास का अंत स्वीकार किया था, परंतु 20वीं सदी के प्रख्यात इतिहासकार ईएचकार ने कैसे इतिहास को अतीत एवं वर्तमान के बीच संवाद कहकर इतिहास का अवसान कर दिया, यह आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। वास्तविकता यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान तथा भविष्य का समान रूपेण महत्व होता है। वर्तमान में इतिहास का समसामयिक समाज को अतीत की गवेषणा, अपने पूर्वजों की उपलब्धियों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित तथा प्रोत्साहित करता है कि उसमें समसामयिक के हित में कुछ वृद्धि कर सके। वह यहीं पर गौरवपूर्ण अतीत का अंत न करके भावी पीढ़ी के सुखद तथा सुसंपन्न भविष्य की कल्पना करके अतीत की समस्याओं को भविष्य की गोर में प्रक्षेपित करता है। एल्टन पृष्ठ संख्या 14 तथा रांके ने इतिहास में भविष्य को सर्वाधिक महत्व दिया है। ऑक्सफर्ड ने तो स्पष्ट कहा है कि अतीत के आधारशिला पर वर्तमान का आविर्भाव हुआ है जो मनुष्य के भविष्य का निर्णायक होगा। देवी के अनुसार अतीत में रुचि वर्तमान की सुरक्षा तथा सुखद भविष्य के निर्माण के लिए किया जाता है। मनुष्य चिंतनशील प्राणी है, पशु पक्षी को भविष्य की चिंता नहीं होती है, परंतु मनुष्य जो कुछ सोचता या करता है उसके पीछे भावी पीढ़ी के सुखद भविष्य की कल्पना सन्निहित रहती है। भारतीय मनीषियों ने वेदों, महाकाव्यों तथा इतिहास की रचना समसामयिक सामाजिक सुखों तथा स्वांत सुखाय के लिए नहीं अपितु अतीत की गौरवपूर्ण परंपराओं को भावी पीढ़ी के सुखद भविष्य के लिए किया है। भारतीय इतिहास में महाराणा प्रताप, शिवाजी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने अपने जीवन का बलिदान स्वांत सुखाय के लिए नहीं बल्कि भावी पीढ़ी की स्वतंत्रता के लिए किया था। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता संग्राम के समय जेल की यातनाओं को भावी पीढ़ी के सुखद भविष्य तथा भारत की स्वतंत्रता के लिए सहन किया था। अतः इतिहास निरंतर गतिशील कालचक्र, अतीत तथा वर्तमान को संपृक्त करने वाला एक सेतु है। इतिहासकार इस सेतु पर आसीन होकर समसामयिक समाज को इतिहासकार इस सेतु पर निरंतर चक्रीय प्रकाश स्तंभ होता है। उसका पुनीत कर्तव्य अतीत के उदाहरणों द्वारा वर्तमान को प्रशिक्षित करना एवं सुखद भविष्य का मार्गदर्शन करना होता है। अतः इतिहास अतीत तथा वर्तमान के बीच संपर्क मार्ग का पर एक सेतु है जो अतीत, वर्तमान तथा भविष्य के बीच अवरोध को दूर करके भावी पीढ़ी के लिए निष्कंटक मार्ग का दिशा निर्देश करता है। इतिहास वास्तव में सत्यम शिवम सुंदरम का एक सुंदर समन्वय है। यहाँ पर सत्यम का अभिप्राय अतीत के यथार्थ तत्वों का संकलन है। अनेक इतिहासकारों ने समसामयिक विशेष वर्ग के लिए कुछ ऐसे अतीत के तथ्यों का आधार पर इतिहास की रचना समाज के बीच विषाक्त वातावरण के सृजन हेतु किया है। अतः यथार्थ तत्वों के आधार पर प्रस्तुत इतिहास समाज के लिए कल्याणकारी हो और जो समाज के लिए कल्याणकारी होगा इस इतिहास का स्वरूप निश्चित ही सुंदर होगा। अतः इतिहास को सत्यम शिवम सुंदरम का समन्वय कहना यथोचित प्रतीत होता है।